सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। सभी श्रोता साथियों को संज्ञा का नमस्कार। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जी हाँ श्रोताओं, खून लहू रक्त हर इंसान में एक सा होता है। लाल रंग का रक्त वाहिनियों में दौड़ता एक जिंदा शरीर को गति देने वाला लहू। कार्यक्रम में आज बात की शुरुआत हमने की इस गीत के साथ, और आप जरूर समझ रहे होंगे हमारा इस गीत को सुनाने का उद्देश्य। रक्त शरीर का एक ऐसा पदार्थ जिसे आज तक मशीनों से केमिकल्स से बनाने में वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने सफलता नहीं पाई है, लेकिन हर इंसान का शरीर इसे बनाने में सक्षम है। हमारी शरीर रूपी मशीन एकमात्र साधन है रक्त निर्माण का। मतलब आप समझ रहे हैं ना, यदि किसी इंसानी शरीर में रक्त ज्यादा बह गया, प्रदूषित हो गया या निर्मित होने में कोई तकलीफ आने लगी, तो हम मानव ही दूसरे मानव की जान बचा सकते हैं अपना रक्त दान करके। क्या आपने अपने रक्त से किसी और इंसान की जान बचाने के एहसास को कभी जिया है? आपका जवाब हाँ हो या ना, आज का कार्यक्रम सुनने के बाद इस एहसास से गुजरने का दिल आपका जरूर होगा। डॉक्टर एस जी घाटगे नगर के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी डॉक्टर, जो हमारे यहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड भी हैं, अन्य कॉलेजेस में भी लगातार लेक्चर्स और मार्गदर्शन के लिए जाते रहते हैं, और नगर के ब्लड बैंक में भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारी जानकारियों के साथ आज वे हैं हमारे साथ। उनका कार्यक्रम में स्वागत और नमस्कार। सबसे पहले हम डॉक्टर घाटगे से ये जानते हैं कि रक्त है क्या।
रक्त हमारे शरीर में एक प्रकार का द्रव पदार्थ है, क्योंकि शरीर के टिश्यूज और सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, तो इसीलिए टिश्यूज को जीवित रखने के लिए ब्लड बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई होती है और टिश्यू जिंदा रहते हैं। ब्लड में दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक तो लिक्विड पोर्शन होता है जो कि प्लाज्मा कहलाता है, और एक सॉलिड पोर्शन सेलुलर पोर्शन होता है जिसमें कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब अवयव रहते हैं। हर एक अवयव का अलग अलग कार्य है। RBC का कार्य है ऑक्सीजन सप्लाई करना, प्लाज्मा का काम है प्रोटीन और जो कोगुलेशन फैक्टर्स रहते हैं वो सप्लाई करता है, प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करता है। इस तरह हर एक अवयव का अलग अलग कार्य है, इसीलिए ब्लड हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया है। रक्तदान को महादान कहा गया है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत समय पर खून न मिलने के कारण हो रही है।
खून का निर्माण आज तक किसी ने नहीं किया है, ना उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि मानव का रक्त मानव के लिए ही काम आता है।
खून के रिश्ते को दुनिया का सबसे अटूट बंधन माना जाता है, और अपनी रगों में बहते खून के चंद कतरे दान करके आप ऐसे अनजाने लोगों से भी खून का रिश्ता जोड़ सकते हैं जो जरूरत के वक्त आपसे मिले इस तोहफे के दम पर नया जीवन पाकर उम्र भर आपके ऋणी रहेंगे।
रक्तदान करने के लिए भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। जैसे आपने कहा खून एक ही होता है, मानव मानव को दे सकता है, लेकिन ये बीच में ब्लड ग्रुप ए बी बी पॉजिटिव, ये क्या होता है?
दो सिस्टम्स होती हैं, एक ए बी ओ सिस्टम और एक आर एस सिस्टम। ए बी ओ सिस्टम में ब्लड को ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दूसरा आर एस सिस्टम होता है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। मोस्टली 90-95% लोग जो होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं और 3-5% लोग जो होते हैं जो आर एच निगेटिव होते हैं। तो आर एच निगेटिव ब्लड इसलिए इम्पोर्टेंट बोला गया है क्योंकि ये काफ़ी कम लोगों में पाया जाता है, जिसकी जब जरूरत पड़ती है तो हमें आर एच निगेटिव को खोजने में काफ़ी दिक्कत जाती है। तो ऐसे लोगों की हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना करके रखे हुए हैं आर एच निगेटिव पर, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव, जिसको जैसी जरूरत पड़ती है उसके अनुसार उनको कॉल करके बुलाया जाता है और उनसे रक्त लिया जाता है।
तो जिस ग्रुप का व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है उसको उसी ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड दिया जा सकता है।
जी जी।
और जैसे आपने कहा आर एच निगेटिव, तो ये शब्द सुनकर मुझको ध्यान में आ रहा है कि कहा जाता है कि लोगों को कुंडली नहीं शादी के समय ब्लड ग्रुप मिलाने चाहिए, आर एच निगेटिव के समय आगे प्रॉब्लम्स होती हैं।
जी जी
तो
जी,
ऐसा क्यों कहा जाता है?
आर एच निगेटिव में क्या फीमेल्स लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि पहली प्रेगनेंसी तो उनकी नॉर्मल हो जाती है, परंतु आर एच निगेटिव होने से तक है कि इफ़ द मदर इज़ आर एच निगेटिव एंड द फादर इज़ आर एच पॉजिटिव, तो क्या होता है जो होने वाला जो बच्चा है वो आर एच पॉजिटिव होता है और वो मदर्स के ब्लड में जब सर्कुलेट होता है ना, तो उसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के चांस रहते हैं, वो एंटीबॉडीज बच्चे के ब्लड में आती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर के बच्चे की डेथ हो जाती है। पहले प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता है, पहले प्रेगनेंसी में कहते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है, परंतु सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो होती हैं उसमें बच्चे के डिस्ट्रॉय होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए आजकल यदि आर एच निगेटिव मदर हैं तो उनको एट द डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर जो आर एच निगेटिव वैक्सीन रहती हैं वो दे दी जाती है ताकि आने वाले बच्चे को नुकसान ना हो।
ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी लोगों को चढ़ाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी है और ब्लड ग्रुप का आर एच फैक्टर जानने का वक्त नहीं है तो ओ नेगेटिव चढ़ा सकते हैं, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। आमतौर पर सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई ब्लड सेम ग्रुप वाले शख्स को चढ़ ही जाएगा। डॉक्टर्स मैचिंग करने के बाद ही तय करते हैं कि वो ग्रुप चढ़ने लायक है या नहीं।
रक्तदान, जब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो दूसरा व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, ये बात हर इंसान जानता है, लेकिन जब हर शरीर अपने आप अपना खून बनाने के लिए सक्षम है तो रक्त की जरूरत किन किन परिस्थितियों में पड़ती है?
रक्त में जैसे मैंने बताया विभिन्न प्रकार के अवयव हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा हैं, तो हर एक की अलग अलग कंडीशंस में जरूरत पड़ती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, जब पेशेंट के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है महिलाओं में 11 से 12 ग्राम परसेंट होता है, जब वो हीमोग्लोबिन परसेंटेज 11 से गिर करके 6 या 5 आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा प्लाज्मा, बर्न की केसेस में क्या होता है कि प्लाज्मा शरीर से बाहर निकल जाता है, डायरिया डिहाइड्रेशन में हमारे शरीर से पानी ज़्यादा निकल जाता है, तो ऐसी केसेस में हमें प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। लीवर डिजीजेस जिसमें कि हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स रहते हैं जो कि हमको उसकी पूर्ति करते हैं। प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग की कंडीशंस डेवलप होती है, हीमोफीलिया, परप्यूरा, ये सब कंडीशंस डेवलप होती है जिसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, तो ऐसी केसेस में प्लेटलेट्स हमको देने पड़ते हैं।
इसके अलावा एक्सीडेंटल केसेस,
एक्सीडेंटल केसेस में होता है कि यूजुअली ब्लड का लॉस हो जाता है, ब्लड के लॉस में आपका आरबीसी भी जाता है, डब्ल्यूबीसी भी जाता है, प्लाज्मा में होल ब्लड निकल जाता है, उस केसेस में हमको होल ब्लड दिया जाना उचित है क्योंकि हमको सभी अवयव की पूर्ति करनी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सबकी पूर्ति करनी होती है।
कुछ रोग होते हैं जैसे सिकल सेल और थैलेसीमिया,
ये वंशानुगत बीमारियां हैं। एक नॉर्मल आरबीसी के लाइफ स्पान होती है 120-130 डेज, परंतु सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि आरबीसी की लाइफ स्पान कम हो जाती है, 20 दिन 30 दिन तक वो जिंदा रहेंगे और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से वो एनीमिया डेवलप होता है, क्योंकि एक 120 डेज जो जीवित रहना है वो 20 दिन 30 दिन जिंदा रह करके खत्म हो जाएंगे, तो रिपीटेड वो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं और जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसके कारण एनीमिया डेवलप होता है।
थैलेसीमिया में शायद ब्लड सेल्स बनते ही नहीं।
हाँ, थैलेसीमिया में बनते हैं, परंतु उसमें भी क्या है कि जो RBC रहते हैं वो टूटते जाते हैं, जल्दी टूटते जाते हैं।
तो ऐसे पेशेंट्स को ब्लड की जरूरत लगातार पड़ती होगी।
जी, इनको महीने में कम से कम 2 बार तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता ही लगता है।
वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन करके आप 3 जिंदगियां बचाते हैं, क्योंकि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स, RBC और प्लाज्मा होते हैं जो 3 लोगों के काम आ सकते हैं। भारत में 7 जून 1920 को इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ब्लड बैंक की याद जरूरत पड़ने पर ही आती है। ज्यादातर लोग रक्तदान से कतराते हैं। पेशे से लेक्चरर दीपक ने बताया कि वो और उनका परिवार हर 3 महीने पर रक्तदान करता है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन जब पहले किसी पेशेंट को किया जाता था, आज से 15-20 साल पहले, तो बहुत आसानी से किसी का भी ब्लड बस सिर्फ ब्लड ग्रुप देख करके चढ़ा दिया जाता था। लेकिन आज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, ब्लड लेने से पहले 10 तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं।
जी,
वो सब क्या परिस्थितियां आजकल डेवलप हो?
पहले क्या होता था, कोई भी पेशेंट के रिलेटिव ब्लड देने से घबराते थे, व्यावसायिक रक्तदाताओं के ऊपर डिपेंड करते थे। व्यावसायिक रक्तदाताओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती थी, सिफिलिस, गनोरिया, गुप्त रोग जो हैं, तो ये बीमारियां रक्त के द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं। मलेरिया पता नहीं चलता था, एड्स जो बीमारी है लोगों को ट्रांसफर हो सकती है। तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि 5 टेस्ट इंपॉर्टेंट, HIV, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, MP, मलेरियल पैरासाइट्स एंड VDRL, VDRL टेस्ट गुप्त रोगों के लिए किया जाता है। तो जो भी ये ब्लड आप इशू करेंगे, ये 5 टेस्ट मैंडेटरी हैं, बिना उसके आप ब्लड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ये रक्त के द्वारा ही ट्रांसफर होती हैं ये बीमारियाँ।
जो ब्लड डोनर होता है उसके ब्लड का पहले ये 5 टेस्ट होने के बाद,
स्क्रीनिंग करने के बाद ही हम उनका ब्लड निकालते हैं, और यदि धोखे से कोई पॉजिटिव आ भी गया हमारे पास तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते, उस ब्लड को हम पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते।
किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता, और ब्लड डोनेशन से आप ये पुण्य कमा सकते हैं।
ब्लड देने वाले जो डोनर्स होते हैं, उन लोगों में इसके अलावा और कौन सी बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह हो, जो लोग ब्लड नहीं दे सकते हैं?
जी जी, तो ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जैसे जो सफर करते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लेप्रोसी, कन्वल्शंस और TB, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिस पहले हम डोनर्स की स्क्रीनिंग करते हैं, उनसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनका एग्जामिन करते हैं, और यदि हमको लगता है कि हाँ वो देने लायक फिट है तो ही हम। दूसरा हीमोग्लोबिन और वेट बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से यदि नीचे है तो ऐसे डोनर्स का हम ब्लड नहीं लेते। जिनका वजन 45 ग्राम से कम है ऐसे लोगों का हम ब्लड नहीं लेते। 16 वर्ष से 17 वर्ष से कम है तो ऐसे लोग ब्लड रक्तदान नहीं कर सकते हैं। जो 60 साल से ऊपर हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते।
इतने सारे लोगों को निकालने के बाद बहुत कम लोगों की संख्या बचती है जिनके पास स्वस्थ ब्लड है, जो दूसरों को सहायता कर सकते।
इसी कारण हमको ना हर सामाजिक संस्थाओं से कॉन्टेक्ट करके रक्तदान शिविर आयोजित करना पड़ता है।
लेकिन जब रक्तदान शिविर होते हैं, बड़ी संख्या में लोग ब्लड देने के लिए आते हैं, तो क्या इतने अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हर इंसान की हो पाती
है? जी जी जी, बिल्कुल बिना स्क्रीनिंग के हम कोई ब्लड नहीं। मेन क्राइटेरिया उसका है हीमोग्लोबिन और वेट, उसको देखते हैं, ग्रुप देखते हैं। फिर बाद में जब हम रक्त संग्रह कर लेते हैं, उसके बाद हम ले जा करके उसका एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा टेस्टिंग में टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं।
क्या होता है इस टेस्टिंग में, क्या चेक किया जाता है?
उनके जो ब्लड में है एंटीबॉडी बनी है कि नहीं, बने एड्स की एंटीबॉडी बनी है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी है कि नहीं, पॉजिटिव तो नहीं है वो। वो तो टेस्टिंग में हमको ये पता चलता है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव हैं तो ऐसे रक्त को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कलेक्शन के बाद भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
जो आप लोग ब्लड इकट्ठा करके रखते हैं प्रिजर्व करके, तो कितने दिनों तक रखा जा सकता है?
ब्लड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, एक सॉल्यूशन जो रहता है उसमें, वो CPD सॉल्यूशन कहलाता है, और उसमें 1 मंथ तक के हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और हमको यानी खराब होने के चांसेस इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम लोग उसको एक्सचेंज में रोटेट करते रहते हैं। बिना एक्सचेंज के हम देते नहीं है। ब्लड तो ऐसी चीज है ना, बनाई जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, तो इसीलिए हम जिसको भी ब्लड उनको मोटिवेट करते हैं, हम डोनर्स को, जो लोग घबराते हैं उनको समझाते हैं, लोगों के मन में प्रांतियाँ रहती हैं हम दे देंगे तो हमारे को कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगी, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून है, यदि उसमें से एक पाव निकाल लेंगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, इतना तो चोट लगती तो निकल जाता है हमारा।
जो लोगों के मन में आपने कहा डर बैठा हुआ होता है, जब किसी घर वाला कोई अपने घर का सदस्य जिसको ब्लड की जरूरत होती है तो घर के सदस्य लोग अपना ब्लड ना देके प्रोफेशनल डोनर ढूंढते हैं, ये कहाँ तक सही है?
नहीं तो यदि घर के लोग यदि ब्लड डोनेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है और खान पान अच्छा रहता है, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है तब, क्योंकि हम प्रोफेशनल डोनर्स की स्क्रीनिंग करेंगे उसमें हीमोग्लोबिन हमको किसी को 7 ग्राम मिल रहा है, 6 ग्राम मिल रहा है, उन्हीं को तो खुद को ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, तो इसलिए हम ऐसे स्वस्थ लोगों को मोटिवेट करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि घर के लोग दें, अपने रिलेटिव्स दें तो ज़्यादा उचित है।
ये बात तो सही है कि घर के सदस्य अगर अपने परिवार के ही व्यक्ति को खून देते हैं तो किसी भी तरह का खतरा होने की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन कुछ समय पहले तक डॉक्टर साहब देखा जाता था कि बहुत आसानी से प्रोफेशनल डोनर्स मिल जाते थे, और ये डोनर्स ऐसे होते थे कि पैसे के बदले अपना खून बेचते थे, और 2 बार ब्लड देने के बीच जितनी समय अवधि होनी चाहिए उसको भी मेंटेन नहीं करते थे, मतलब उनका ब्लड भी स्वस्थ नहीं रहता होगा, उनका ब्लड रोगयुक्त भी होता होगा। लेकिन आजकल ये प्रोफेशनल डोनर्स के बारे में कुछ भी सुनने में नहीं आता है।
प्रोफेशनल डोनर्स तो प्रोहिबिटेड हैं आजकल, प्रोफेशनल डोनर्स हम पहचान जाते हैं देखने से ही, क्योंकि हाथों में निशान देखते हैं कि निशान तो नहीं है, कई लोग झूठ बोलते हैं हमारे बीड़ी का वो गिर गया इसलिए यहाँ जल गया करके, इस तरह से हमको अनुभव है कि हमने तो इतने साल ब्लड बैंक में भी काम किया है तो हमको सही संबंध हम देखने से उनके हाव भाव से पहचान जाते हैं, ताकि किसी प्रकार का मनी का ट्रांजेक्शन ना हो, ये ना हो।
प्रोफेशनल डोनर्स प्रोहिबिटेड हैं तो अब उन लोगों का खून कहीं पे भी नहीं लिया जाता,
इसीलिए तो हम लोग वॉलंटियर डोनर्स को मोटिवेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं।
ब्लड बैंक से पैसे देकर ब्लड नहीं लिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेशनल डोनर्स को 1998 में बैन कर दिया था, अब ब्लड के बदले ब्लड ही लिया जा सकता है।
पहले उन लोग पैसे के लिए ही तो ब्लड देते थे, वो लोग
उनको पैसे मिलते थे,
हाँ,
पैसे, अपना खून बेचते,
हाँ,
थे,
अपना बेचते थे,
तो वो सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म हो,
पूरी तरह से खत्म हो गई,
और अगर ऐसा कोई करता है तो वो अपराधी है।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने आजकल प्रोफेशनल डोनर टोटली बैन कर, आप प्रोफेशनल डोनर ब्लड नहीं कर सकते, करते पाए गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है।
मजबूरी में बिना डोनर के भी स्वैच्छिक संस्थाएं ब्लड देती हैं, उनके पास अच्छा स्टॉक और ब्लड देने वाले लोगों का डाटा बैंक भी होता है, और हमारे शहर में भी इस तरह के डाटा बैंक उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ कुछ एनजीओज भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
जैसा आपने कहा कि 3-4 लीटर खून है एक शरीर में, उसमें से एक पाव मतलब एक यूनिट शायद,
एक यूनिट, हाँ, 300 cc,
जी हाँ, इतना खून निकलता है तो वो कितने दिनों में वापस बन जाता है शरीर में?
वो तो कम से कम 7 दिन के अंदर बन जाता है, रेड सेल तो कम से कम 7 दिन में बन जाते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम जो रक्तदान करता है उसको ये सजेस्ट करते हैं दूसरा रक्तदान जो भी करेंगे 3 महीने के पहले ना।
जो 3 महीने से कम समय में करते हैं पैसे लेने के लिए करते हैं उनको हम प्रोफेशनल डोनर्स कह सकते हैं।
जी जी, परंतु ऐसा है कि कई लोग रिलेटिव्स हैं, कोई उनके साथ और कोई है नहीं, तो ऐसी केसेस में 2 महीने में भी दे सकते हैं, यदि उनको पेशेंट को बहुत ही जरूरी है, पेशेंट को मरने तो देंगे नहीं, तो
कोई
देर और रेयर ग्रुप है, निगेटिव ग्रुप है, तो निगेटिव ग्रुप में तो हमको तो आवश्यकता पड़ती है, कोई और दूसरा नहीं मिल रहा है, तो भाई 2 महीने में भी हम वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाते उसको, उस केस में हम।
जिन लोगों का हीमोग्लोबिन काफी अच्छी मेल्स में मान लीजिए 16-17 है, तो ऐसे लोगों को क्या कंपलसरी जैसा नहीं करना चाहिए कि ब्लड देना ही चाहिए? लोग
16-17 ग्राम जिनका है, 16-17 ग्राम तो अच्छा है हीमोग्लोबिन, उसमें परंतु मोर देन 20 ग्राम यदि है तो ऐसे लोगों का ब्लड नहीं लेते, वो एक बीमारी है।
अच्छा।
जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, तो पॉलीसाइथीमिया एक कॉन्जेनेटल बीमारी होती है जिसमें कि विस्कोसिटी ब्लड की जो थिकनेस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे लोगों का ब्लड नहीं चढ़ा सकते पेशेंट्स लोगों को, क्योंकि उसमें उनकी विस्कोसिटी काफ़ी एकदम थिक रहती है, वो जा करके जल्दी क्लॉट बना देगा और वो क्लॉट जा करके ब्लड वेसल्स में कहीं फंस जाएगा, तो उसमें हार्ट अटैक का डर है, किडनी और किडनी बीमारी वगैरह का कोई भी डर है।
कैसे लोगों को रेगुलर ब्लड देते रहना चाहिए, मतलब केवल समाज सेवा के लिए नहीं, अपने शरीर के स्वास्थ्य को भी ख्याल रखना।
एवरी 3 मंथ्स यू कैन डोनेट ब्लड, हर 3 महीने में आप दे सकते हैं। कैसे ऐसे व्यक्ति हैं बताएं, मतलब उनके 40 बार 50 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं,
उनको कोई कमजोरी नहीं,
कोई कमजोरी नहीं।
जो लोग ब्लड देते हैं उन लोगों के जो फीलिंग्स रहती हैं, आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं कि हम इस तरह से किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं, हमारे कारण किसी व्यक्ति की जान बच रही है।
वो लोग तो बोलते ही हैं हमको रक्तदान करने में काफ़ी खुशी होती है, हम लोग तो मेरा तो 40 बार है 50 बार है ऐसा लोग खुशी खुशी देते हैं। बोले कोई लोग तो अपने हर बर्थडे पर देते हैं
जी,
है ना, कि उसको यादगार बनाने के लिए, कि कोई मैरिज एनिवर्सरी में देता है,
15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह में तो शिविर लगते ही हैं, लोग देते हैं। जिस समय ब्लड डोनेशन कोई करता है इस तरह शिविर में या कहीं पे, तो पेशेंट को भी क्या ख्याल रखना चाहिए? नीडल वगैरह जैसे रिपीट करते हैं कहीं कहीं पे, तो डोनर है वो भी देते समय क्या ख्याल?
आजकल ये जो बीमारियां हैं उसको देखते हुए आजकल सब कार्य जो है डिस्पोजल के थ्रू हो गया है
जी।
आप कोई नीडल बॉयल नहीं कर सकते, कोई नीडल लेने के लिए डिस्पोजेबल नीडल्स आ गए हैं, डिस्पोजेबल सेट्स आ गए हैं, उसके द्वारा ही आपको ब्लड लेना है, उसके द्वारा ही आपको प्रिक करना है।
हम आपको बता देते हैं कि ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया क्या है। रक्तदान करने की इच्छा होने पर रक्तदाता को अस्पताल, ब्लड बैंक या जहां कहीं भी कैंप लगा होता है वहां जाकर डोनेशन की इच्छा बतानी होती है। वैसे हमेशा मान्यता प्राप्त बैंक में ही ब्लड दें। इसकी पहचान उनके फॉर्म पर लिखे लाइसेंस नंबर से हो जाती है। ब्लड डोनेट करते वक्त डोनर को एक फॉर्म दिया जाता है जिस पर उसकी मेडिकल हिस्ट्री से बहुत से सवाल होते हैं। डोनर को इसमें सही जानकारी भरनी चाहिए। ये ब्लड लेने और देने वालों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये भी बताएं कि कौन कौन सी दवाएं वो ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर या हार्मोन की अगर दवा ले रहे हैं तो वो ब्लड नहीं दे सकते। इसी तरह एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म किए 3 दिन और कुछ ख़ास दवाओं के लिए 2 दिन ज़रूर हो चुके होने चाहिए। फॉर्म जमा करने के बाद मरीज़ का वज़न, पल्स, ब्लड प्रेशर आदि चेक किया जाता है। सब सही है तो हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए ब्लड लिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा है तो डोनर को बेड पर लिटार कर ब्लड निकालने के लिए सिरिंज लगाई जाती है। एक बैग भरने में आमतौर पर 5 से 7 मिनट लगते हैं। ब्लड लेने के बाद ज़्यादातर रक्तदाताओं को जूस, कॉफ़ी और कुछ खाने को दिया जाता है और करीब 10 मिनट आराम करने के बाद वो घर जा सकता है। अगर लाइन न लगी हो तो फॉर्म भरने से लेकर डॉक्टरी जांच, ब्लड डोनेशन और रिफ्रेशमेंट लेने तक का काम 30-40 मिनट में हो जाता है। और सिर्फ इतने से वक्त में आपका दिया हुआ ये रक्त 3 जिंदगियां बचाने में सक्षम होता है।
आप तो ब्लड डोनेशन सेंटर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हमारे शहर में कितनी जरूरत लगती है, कितना आप लोग इकट्ठा कर पाते हैं?
बिलासा ब्लड बैंक का जो आउटपुट है वो तो कम मैक्सिमम हमारा जाता है 40 से 50 यूनिट पर डे।
लोग खुद आते हैं?
हाँ, लोग खुद आते हैं। हम लोगों का ये है कि लोगों को मालूम है बिलासा में जाओ तो वहाँ पर एक्सचेंज बेसिस पर ब्लड मिलता है और वो स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से ले करके जाते हैं। हम लोग ब्लड बेचते नहीं, पेशेंट लोगों को समझा देते हैं पहले। यहाँ पर कोई खरीदने की भी बात करता है तो हमें यहाँ खरीदने में ब्लड नहीं मिलता है।
एक्सचेंज का मतलब एक बोतल ब्लड उन्होंने अपनी तरफ से दिया। हाँ। और जो ग्रुप उनको चाहिए,
हाँ, जो ग्रुप उनको चाहिए वो ग्रुप हम दे देते हैं। यदि उनका नहीं मिल रहा है, वो लोग देने आए हैं ब्लड परंतु उनका ग्रुप नहीं मिल रहा है, पेशेंट को चाहिए ओ ग्रुप और उसका ए ग्रुप है, तो हमारे पास यदि ओ ग्रुप है तो हम ओ ग्रुप उसको दे देंगे और ए ग्रुप हम रख लेंगे।
बिलासा ब्लड बैंक के अलावा बिलासपुर शहर में और कितने ब्लड बैंक्स हैं?
बिलासा के अलावा प्राइवेट में एकता ब्लड बैंक है जिसको डॉक्टर गिडवानी रन कर रहे हैं, वो थैलेसीमिया सोसाइटी के थ्रू उनको लाइसेंस मिला है। हम लोग के जो ब्लड बैंक जो भी खोलते हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, ड्रग एंड कंट्रोलर जो हैं वो लाइसेंस इशू करते हैं, सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जो रहते हैं बॉम्बे से हम लोग लाइसेंस इशू होता है और एक बार जो लाइसेंस इशू होता है वो हमारे को 7 साल के लिए इशू होता है,
उसके बाद रिन्यू कराना।
हाँ, उसके बाद रिन्यू। उसके अतिरिक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, सिम्स में है, अपोलो हॉस्पिटल में है, ये इन लोग अपनी पूर्ति केवल अपने लिए ही करते हैं।
अच्छा।
हम परंतु बिलासा ब्लड बैंक ऐसा है जो कि सभी को पूर्ति करता है। बिलासपुर के मैक्सिमम नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स में बिलासा ब्लड बैंक के द्वारा ही पूर्ति होती है। इसीलिए हमारे यहाँ का
ब्लड बैंक के थ्रू जो है वो थैलेसीमिया
सोसाइटी को प्रेफरेंस देना पड़ता है उनको, ये रहता है। हालांकि थैलेसीमिया सोसाइटी को उन लोग को थोड़ा सा कंसेशनल ये करना पड़ता है, क्योंकि इनको तो बार बार जरूरत लगने की है ना, महीने में दो बार कम से कम उनको लगने का है ब्लड।
दो ब्लड बैंक अपने बिलासपुर
प्राइवेट में दो ब्लड बैंक है, उसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के हैं, सिम्स में मेडिकल कॉलेज में है, अपोलो हॉस्पिटल है, टोटल 5 ब्लड बैंक्स हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर मंथ का आउटपुट जो जाता है 1000 से 1200 पर मंथ, जिसमें हम लोग कंपोनेंट सेपरेट भी करके देते हैं, जिसको प्लाज्मा की जरूरत है प्लाज्मा देते हैं, जिसको प्लेटलेट की जरूरत है उसको प्लेटलेट देते हैं, जिसको आरबीसी की जरूरत है आरबीसी देते हैं, ऐसे करते हैं। यानी कंपोनेंट फैसिलिटी भी सब जगह नहीं है,
केवल बिलासपुर शहर में है।
हाँ, बिलासपुर शहर में,
हर शहर में भी फैसिलिटी शायद नहीं
है, हर शहर में भी नहीं है।
आप हमारे श्रोताओं को ब्लड डोनेशन के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम लोगों से यही कहेंगे अधिक से अधिक रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि हमारा ब्लड ये करने से हमको कमजोरी आ जाएगी, मैं बताना चाहूंगा हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर खून है। यदि आप एक पाव खून दे देंगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और लोगों को लगता है कि हम ब्लड देते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे जो लेते हैं जो टेस्टिंग चार्जेस हैं एक्सचेंज के अलावा, हम लोग टेस्टिंग चार्जेस लेते हैं जो कि हमारे द्वारा नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल द्वारा फिक्स किए गए हैं, वो 1400 रुपये चार्जेस हैं। यदि आप अपना ब्लड भी देंगे, लोगों को लगता है हम तो अपना ब्लड भी दिए और हमसे पैसा भी ले रहे हैं, परंतु टेस्टिंग करने के जो चार्जेस हैं वो तो लगेंगे, क्योंकि हमारा तो प्राइवेट संस्था है। प्राइवेट संस्थान में तो हमको कॉटन स्प्रिट निडिल सिरिंज से लेकर के टेस्टिंग मटेरियल सब हमको परचेस करना होता है। तो इसीलिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने फिक्स किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलग फिक्स किए हैं, गवर्नमेंट के लिए अलग फिक्स किए हैं। गवर्नमेंट के लिए उन्होंने 1100 फिक्स किए हैं चार्जेस, और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उन्होंने 1400 किया है। तो लोगों से यही कहूँगा कि अधिक से अधिक रक्तदान करें, आप लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर करिए, और आपके एक रक्तदान से लोगों को यदि जीवन दान मिलता है तो उससे बड़ी खुशी आपके जीवन में और कुछ नहीं हो सकता।
किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बचाने का एहसास मैं भी 2 बार रक्तदान करके महसूस कर चुकी हूँ, और आपसे भी यही कहूंगी अपनी जिंदगी में कम से कम 1 बार रक्तदान करके बने दूसरों के जीवन की मुस्कान। ब्लड डोनेशन के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए हम डॉक्टर SG घाटके जी को धन्यवाद देते हैं, और आप श्रोताओं से अब इजाजत चाहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। सभी श्रोताओं को संज्ञा का नमस्कार। सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।